नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, डिसरप्टेड माई मिस एडवेंचर इन द स्टार्टअप बबल। पत्रकार डैन लायंस का आत्मकथात्मक संस्मरण है। यह उस समय से शुरू होता है जब लंबे पत्रकारिता करियर के बाद 50 की उम्र पार कर चुके लायंस अपनी नौकरी खो देते हैं और बोस्टन की सॉफ्टवेयर कंपनी हबस्पॉट में मार्केटिंग फेलो की भूमिका स्वीकार करते हैं। पुस्तक मुख्यतः दो स्तरों पर काम करती है। एक स्तर पर यह उम्र, पहचान और असुरक्षा से जूझते व्यक्ति का व्यंग्यपूर्ण कार्यस्थल अनुभव है। दूसरे स्तर पर यह स्टार्टअप संस्कृति, वेंचर कैपिटल की अपेक्षाओं, बिक्री केंद्रित दबाव और आकर्षक कार्यालय सुविधाओं के पीछे छिपी श्रम व्यवस्था की आलोचना है। लायंस हबस्पॉट को पूरे तकनीकी क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधि नहीं मानते, पर उसे उस दौर के स्टार्टअप उन्माद का प्रभावी उदाहरण बनाते हैं। हास्य, कटाक्ष और व्यक्तिगत असहजता के माध्यम से किताब पूछती है कि क्या युवा दिखने वाली, अनौपचारिक और मिशन चालित कंपनी वास्तव में कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल भी होती है। इसका उद्देश्य सफलता की चमकदार तकनीकी कहानी के पीछे मौजूद शक्ति संबंधों को दिखाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मध्यायों में करियर का टूटना और तकनीकी क्षेत्र में उम्रवाद। किताब का आरंभिक तनाव केवल हबस्पॉट की विचित्रताओं से नहीं बल्कि डैन लायंस की पेशेवर बेदखली से पैदा होता है। अनुभवी पत्रकार होने के बावजूद नौकरी खोने के बाद उन्हें ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है जो युवावस्था को ऊर्जा, अनुकूलनशीलता और सांस्कृतिक उपयुक्तता का पर्याय मानता है। हबस्पॉट में वे औसत कर्मचारी की उम्र से लगभग दोगुने हैं, इसलिए उनका अनुभव एक साधारण नई नौकरी का अनुभव नहीं रह जाता। वे देखते हैं कि अनौपचारिक भाषा, लगातार सामाजिक मेलजोल, देर तक चलने वाली पार्टियां और कॉलेज जैसी गतिविधियां किस तरह कार्यस्थल की अपेक्षित पहचान तय करती हैं। यह व्यवस्था किसी को सीधे उम्र के आधार पर अस्वीकार किए बिना भी वरिष्ठ कर्मचारी को बाहरी बना सकती है। लायंस का दृष्टिकोण यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि अनुभव को मूल्यवान मानने का दावा करने वाली कंपनियां व्यवहार में किस प्रकार युवा, सस्ते और आसानी से ढलने वाले श्रम को प्राथमिकता देती हैं। साथ ही संस्मरण की सीमा भी यही है। लेखक की नाराजगी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और नियंत्रण खोने की भावना से जुड़ी है, इसलिए हर आलोचना को निष्पक्ष संगठनात्मक अध्ययन नहीं माना जा सकता। फिर भी यह हिस्सा करियर परिवर्तन के जोखिम, आयु आधारित पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक अनुरूपता के दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। दूसरा, मजेदार कार्यालय संस्कृति के पीछे नियंत्रण और अस्थिरता। लायंस हबस्पॉट के कार्यालय को ऐसी जगह के रूप में चित्रित करते हैं जहां मुफ्त भोजन, बियर, नर्फ गन, पुशअप क्लब, बाउंसी बॉल कुर्सियां और लगातार मनोरंजन कार्यस्थल की पहचान बन जाते हैं। उनका तर्क यह नहीं है कि सुविधाएं अपने आप में गलत हैं। समस्या तब पैदा होती है जब खेल, दोस्ती और काम की सीमाएं धुंधली करके कंपनी कर्मचारियों से अधिक भावनात्मक निष्ठा और उपलब्धता पाने लगती है। पुस्तक में यह वातावरण फ्रैट हाउस और पंथ सदृश समूह के बीच का मिश्रण लगता है, जहां उत्साह दिखाना पेशेवर योग्यता का अनकहा प्रमाण बन सकता है। लायंस इस विरोधाभास को रेखांकित करते हैं कि बाहर से मुक्त दिखने वाला कार्यालय भीतर से प्रदर्शन, सामाजिक स्वीकार्यता और प्रबंधकीय नियंत्रण से भरा हो सकता है। ऐसे माहौल में असहमति जताने वाला, परिवार केंद्रित जीवन जीने वाला या केवल शांत ढंग से अपना काम करना चाहने वाला व्यक्ति अलग थलग पड़ सकता है। यह आलोचना आधुनिक कार्यस्थलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि संस्कृति को केवल सुविधाओं और उत्सवों से नहीं मापा जा सकता। अधिक सार्थक कसौटियां हैं भूमिका की स्पष्टता, सम्मानजनक संवाद, निष्पक्ष मूल्यांकन, काम और निजी जीवन की सीमा तथा असफलता या असहमति के समय कर्मचारी के साथ व्यवहार। किताब इसी अंतर को हास्यपूर्ण लेकिन असुविधाजनक ढंग से दिखाती है। तीसरा, बॉयलर रूम बिक्री मॉडल और मिशन भाषा का विरोधाभास। डिसरप्टेड का सबसे तीखा संस्थागत चित्रण हबस्पॉट की बिक्री व्यवस्था पर केंद्रित है। लायंस के अनुसार कंपनी आधुनिक इनबाउंड मार्केटिंग और बेहतर ग्राहक संबंधों की भाषा बोलती है, लेकिन उसके भीतर का महत्वपूर्ण इंजन आक्रामक फोन बिक्री है। वे इसे बॉयलर रूम की तरह प्रस्तुत करते हैं, जहां युवा बिक्री कर्मियों पर लक्ष्य हासिल करने का निरंतर दबाव रहता है और लक्ष्य से चूकने वालों को ग्रेजुएट कर दिया जाता है, अर्थात उन्हें निकाल दिया जाता है। इस शब्दावली का व्यंग्य महत्वपूर्ण है। कठोर निर्णय को सकारात्मक, उत्सवी या विकासोन्मुख भाषा में ढक देने से उसका वास्तविक प्रभाव समाप्त नहीं होता। लायंस का व्यापक संकेत है कि तकनीकी कंपनियां अक्सर अपने उत्पाद, उद्देश्य और संस्कृति को नई भाषा में प्रस्तुत करती हैं, जबकि श्रम प्रबंधन की कुछ पद्धतियां बहुत पारंपरिक और कठोर बनी रहती हैं। बिक्री लक्ष्य किसी भी व्यवसाय में आवश्यक हो सकते हैं, इसलिए किताब यह नहीं कहती कि हर मापदंड अनुचित है। बल्कि यह पूछती है कि क्या लक्ष्य यथार्थवादी हैं, क्या कर्मचारियों को प्रशिक्षण और स्थिरता मिलती है, और क्या प्रबंधन अपनी मानवीय भाषा के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रकार संस्मरण, स्टार्टअप के आदर्शवादी दावों और राजस्व पाने की रोजमर्रा की प्रक्रियाओं के बीच मौजूद दूरी को उजागर करता है। चौथा, वेंचर कैपिटल, स्टॉक ऑप्शन और तेज वृद्धि की अर्थव्यवस्था। पुस्तक हबस्पॉट के अनुभव को वेंचर कैपिटल समर्थित कंपनियों की उस अर्थव्यवस्था से जोड़ती है जिसमें तेज वृद्धि को अक्सर स्थिर लाभप्रदता से अधिक महत्व दिया जाता है। लायंस को नौकरी के साथ स्टॉक ऑप्शन का आकर्षण दिया जाता है जो स्टार्टअप जगत में सामान्य प्रतिफल का वादा है। इसका निहित संदेश यह हो सकता है कि आज कम वेतन, अधिक अनिश्चितता और अत्यधिक काम स्वीकार करिए, बदले में भविष्य की कंपनी सफलता में हिस्सेदारी मिलेगी। लायंस इस सौदे को संदेश से देखते हैं क्योंकि ऑप्शन का मूल्य कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर बाजार, वित्त पोषण और सार्वजनिक निर्गम जैसी घटनाओं पर निर्भर करता है। पुस्तक का जोर निवेश सलाह देना नहीं है बल्कि यह दिखाना है कि इक्विटी का सपना संगठनात्मक निष्ठा जुटाने का उपकरण कैसे बन सकता है। जब कंपनी का मूल्यांकन बढ़ता है तो यह व्यवस्था उत्साह पैदा करती है, लेकिन मूल्य स्थिर होने या गिरने पर वही कर्मचारी अधिक नकद वेतन मांग सकते हैं या बेहतर अवसरों के लिए जा सकते हैं। लायंस की आलोचना यह भी बताती है कि ऊंचे मूल्यांकन को उत्पाद की अपरिहार्यता, मजबूत प्रतिस्पर्धी सुरक्षा या ग्राहक उपयोगिता का स्वतः प्रमाण नहीं मानना चाहिए। पाठक के लिए व्यावहारिक निष्कर्ष है कि नौकरी के प्रस्ताव में ऑप्शन को निश्चित आय नहीं, उच्च जोखिम वाले संभावित लाभ की तरह समझना चाहिए और भूमिका वेतन, कार्य स्थितियों तथा कंपनी के व्यवसाय मॉडल को अलग अलग परखना चाहिए। अंत में व्यंग्यात्मक संस्मरण की ताकत और उसकी पक्षपाती दृष्टि डिसरप्टेड किसी निष्पक्ष जांच रिपोर्ट या प्रबंधन पाठ्य पुस्तक की तरह नहीं लिखी गई है। इसकी शक्ति लेखक की प्रत्यक्ष भागीदारी, हास्य और विवरणों को पकड़ने की क्षमता में है। बैठकों की बैठकों, कॉरपोरेट शब्दावली, कार्यालयी रस्मों और पदानुक्रम की अस्पष्टता को लायंस इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि पाठक को स्टार्टअप संस्कृति का चमकदार मुखौटा और उसके नीचे की बेचैनी एक साथ दिखाई देती है। पत्रकार के रूप में उनका अनुभव उन्हें भाषा और जनसंपर्क के अंतर को पहचानने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि कंपनी के मिशन वाक्यों और कर्मचारियों के वास्तविक अनुभवों का विरोधाभास पुस्तक का प्रभावी केंद्र बनता है। फिर भी पुस्तक की सीमाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। लायंस स्वयं स्वीकारोक्ति सदृश कथा के नायक हैं और उनकी निराशा, आयु अंतर तथा पहले के पेशेवर दर्जे का नुकसान उनके निष्कर्षों को प्रभावित करता है। कुछ पाठकों को मध्य भाग में उनका स्वर अत्यधिक शिकायतपूर्ण लग सकता है। इस पक्षपात के बावजूद संस्मरण का मूल्य कम नहीं होता बल्कि पढ़ने का सही तरीका स्पष्ट होता है। इसे किसी एक कंपनी पर अंतिम निर्णय नहीं बल्कि शक्ति, प्रतिष्ठा और संस्कृति के बारे में एक अंदरूनी विवादास्पद गवाही मानना चाहिए। तब यह पाठक को लेखक से सहमत होने के बजाय अपने कार्यस्थल के दावों और व्यवहारों की तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष में, डिसरप्टेड उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो स्टार्टअप में काम करने, तकनीकी कंपनियों की संस्कृति समझने या आधुनिक कार्यालयों की चमकदार छवि के पीछे की व्यवस्था पर विचार करने में रुचि रखते हैं। करियर बदल रहे मध्य आयु के पेशेवरों के लिए इसमें पहचान और अनिश्चितता का एक पहचाना जा सकने वाला पक्ष है। युवा कर्मचारियों, प्रबंधकों और संस्थापकों के लिए इसका लाभ अलग है। वे देख सकते हैं कि मुफ्त सुविधाएं, अनौपचारिकता और प्रेरक भाषा तभी सार्थक हैं जब उनके साथ स्पष्ट भूमिकाएं, सम्मान, सुरक्षित असहमति और निष्पक्ष जवाबदेही भी हो। निवेश या नौकरी के अवसर का मूल्यांकन करने वाले पाठकों को यह स्टॉक ऑप्शन तेज वृद्धि और ऊंचे मूल्यांकन के वादों को अधिक सावधानी से देखने का कारण देती है। समान विषय की अनेक व्यवसाय पुस्तकों से इसका अंतर इसके संस्मरणात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में है। यह बाहर से तैयार किया गया सिद्धांत नहीं देता, न ही स्टार्टअप बनाने की चरणबद्ध सलाह देता है। इसके बजाय यह एक कर्मचारी की आंखों से दिखाता है कि आदर्शवाद, बिक्री दबाव, सामाजिक अनुरूपता और व्यक्तिगत असुरक्षा एक ही कंपनी में कैसे टकरा सकते हैं। इसी कारण यह पुस्तक कभी कभी एकतरफा और शिकायतपूर्ण भी लग सकती है, पर यही निजी स्वर इसे निर्जीव कॉरपोरेट आलोचना से अलग करता है। इसे अंतिम सत्य की तरह नहीं बल्कि तकनीकी कार्यस्थलों के दावों पर जरूरी संदेह पैदा करने वाली तीखी, मनोरंजक और उपयोगी गवाही की तरह पढ़ना सबसे उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डैन लायंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।